अनेक महापुरुष जन्म लेते हैं, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई देश को चलाता है, कोई लीडर होता है, पर हम सबको हमेशा सम्मान नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं बहुत बड़े ज्ञानी नहीं, बहुत बड़े धनी नहीं, बहुत बड़े देश के राजा नहीं, उसके बाद भी लाखों सालों तक, हजारों सालों तक लोग उनको सम्मान देते हैं। क्या फर्क है, क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को हम सम्मान देते हैं? मेरा धन, मेरा ज्ञान, मेरा यश, मेरा कर्म अगर सिर्फ मेरे और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए है तो मैं कितने भी महान बनूं, वो महानता सिर्फ मेरे अपने लिए, और मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक लोग मुझे सम्मान देते हैं। और व्यक्ति कितना कम ज्ञानी है या कम धनी है या कम पावरफुल है वो मायने नहीं रखता, उसके पास जो कुछ भी है अगर वो दूसरों के लिए करता है तो वो महान हो जाता है। महाभारत के समय में बड़े बड़े बहुत सारे कैरेक्टर थे, भीष्म थे, सबसे बड़े योद्धा थे, महाज्ञानी थे, वीर थे, ब्रह्मचारी थे, और उनका नाम भी भीष्म पड़ा क्योंकि वो प्रतिज्ञा कसम खाया था और जीवन भर निभाया। बड़े सारे गुण थे, पर भीष्म के ये सारे गुण समाज को बर्बाद करने के कारण आए। भीष्म महान बने अपने गुणों से, पर अपनी महानता से इस देश को बर्बादी पर ले आए। भीष्म क्यों बने? क्योंकि अपने कामी बाप के, कामी मतलब जिसका सेक्सुअल डिजायर अभी शांत नहीं हुआ है, ऐसे अपनी बाप की काम वासना को शांत करने के लिए कसम खाया कि तब तक मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और सिंहासन पर कभी नजर नहीं डालूंगा, जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भीष्म प्रसिद्ध हो गए, महान हो गए, पर उसके कारण महाभारत की लड़ाइयां हुई क्योंकि वो सिंहासन पर बैठने वाले के साथ देते थे। वो सिंहासन पर बैठने वाला दुर्योधन अपने सामने किसी स्त्री को नंगी करता हो तो भी साथ देते हैं, वो गालियां देता हो तो भी साथ देते हैं, वो सारे गंदे हरकत करते तो भी साथ देते हैं, मजबूर होकर कहते हैं मैं मजबूर हूं। इसीलिए भीष्म महान बना पर कभी हमारे सम्मान के लायक नहीं बना, दुनिया कभी उसको पूजने लायक नहीं समझा। महाभारत में एक दूसरा बड़ा महान पात्र है युधिष्ठिर, सत्यवादी है, धर्म के ऊपर अड़े रहने वाले हैं, पर सत्यवादी और धर्म पर अड़े रहने के कारण युधिष्ठिर महान बन गए, पर महाभारत युद्ध का वो कारण बने, करोड़ों लोगों को मरने का कारण युधिष्ठिर बना। दूत ने युधिष्ठिर को समाचार भेजा कि आपके ताऊ जी ने आपको जुआ खेलने के लिए बुलाया है। द्रौपदी ने समझाया मत जाओ, चार बार हार के आ चुके हो, तुमसे खेला नहीं जाता है, क्यों जाते हो? नहीं, ताऊ जी ने बुलाया, ये धर्म है बच्चे का अपने बड़ों के आदेश को पालन करना, मैं धर्म पालन के लिए जाऊंगा। तो गए धर्म पालन के लिए, जुआ में हारे, शकुनी ने एक पर एक दावा लगाता रहा, सब कुछ देते रहे, किस नाम पर? धर्म के पालन के नाम पर। बीवी को भी दांव पर लगा, ये क्या कर रहे हो, औरत है, इसको क्यों दांव पर लगा रहे हो? नहीं, धर्म है, जो मैंने बोला उसको निभाना है। बीवी को भी लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, खुद को लगा दिया। एक दूसरे बड़े कैरेक्टर हुए व्यास, जो स्वयं महाभारत लिखने वाले हैं, बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो खुद अपनी अपना दुख सुनाते हैं। ऊर्ध्वबाहु व्योम्येश नहि कश्चित् शृणोति माम। मैं क्या करूं, मैं बोल बोल के बुढ़ा हो चुका हूं, हाथ फैला फैला कर बोलता हूं, बच्चों लोगों धर्म क्या है समझ लो, पर कोई सुनता ही नहीं मुझे। वैसे पंडितों को बहुत कम लोग सुनते हैं, ऋषियों को, मुनियों को सुनते हैं एंटरटेन करने के लिए। तो व्यास को भी एंटरटेन करने के लिए सुनते थे। व्यास थक जाता था और खुद परेशान होकर महाभारत में लिखता है, मैं हाथ फैला फैला कर बोलता हूं, कोई मुझे सुनता नहीं है। एक पात्र कृष्ण हुआ महाभारत में, जो भीष्म जैसा हो सकता है इतना बड़ा ज्ञानी ना हो, युधिष्ठिर जैसा हर वक्त सच पर चलने वाला ना हो, पर हजारों सालों के बाद वो हमारे लिए पूज्य बना रहा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उसके पास था वो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए किया गया। वो झूठ बोला तो किसी समाज को बचाने के लिए, वो उसने कहीं कंप्रोमाइज किया तो समाज को बचाने के लिए। पैदा हुआ जेल में, ध्यान दीजिए, पैदा हुआ जेल में, मां बाप का प्यार जिंदगी भर नहीं पाया, दूसरे मां बाप से पाला पोषा गया और मरा किसी जंगल में अकेले किसी शिकारी के बाण से। बुढ़ापा दुख और निराश हताश में बिता, क्योंकि अपने खानदान के लोग बिगड़ चुके थे, उनको खुद मरवाया। पूरी जिंदगी में किसी एक जगह टिका नहीं, जेल से लेकर के मथुरा से गोप से होकर के हस्तिनापुर से द्वारिका तक, सैकड़ों राजाओं को, असुरों को, राक्षसों को, दुष्टों को मारा, हजारों राज्यों को आजाद किया, पर खुद किसी राज्य के राजा नहीं बने। और रहना पड़ा तो समुंदर में एक टापू ढूंढ करके द्वारिका में अपना राज्य अलग से राज्य बसाया, खुद भी राजा नहीं बने। द्वारिका का शासन गण शासन था, गण शासन मतलब एक ग्रुप रूल करता था, जिसमें बलराम कृष्ण सात्यकी आदि अनेक योद्धाओं का एक गण बनाया गया था, जिसका चीफ मुख्य बलराम थे, कृष्ण नहीं था। कृष्ण किसी भी राज्य का राजा नहीं था, किसी युद्ध का सेनापति नहीं था, महाभारत के युद्ध में खुद नहीं लड़ा, खुद लड़ा भी नहीं और वो अपने भाई को लड़ने भी नहीं दिया, ये उनकी कूटनीति थी। तो एक व्यक्ति जिंदगी भर बहुत कुछ किया पर कहीं कुछ खुद कहीं नहीं था, इसीलिए कृष्ण महान हुआ, इसीलिए कृष्ण हमारे लिए आदरणीय हुआ। कृष्ण की और एक खास बात है, जो बोला वो किया। कृष्ण की जो सबसे बड़ी उपलब्धि आपके सामने है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसकी गीता, गीता का उपदेश। अगर आप लोग गीता तो पढ़ते हैं, अगर गीता आप पढ़ते हैं, गीता का हर अक्षर, मैं हमेशा कहता हूं, या तो आप गीता पढ़िए या कृष्ण का चरित्र पढ़िए, हरिवंश पुराण और भागवत में नहीं, महाभारत में पढ़िए। आप महाभारत में कृष्ण का चरित्र पढ़े या गीता पढ़े, गीता पढ़े तो कृष्ण को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कृष्ण कैसा है। और अगर आपको गीता नहीं पढ़ सकते तो महाभारत में कृष्ण का चरित्र पढ़े तो आप समझ जाएंगे कि गीता का उपदेश क्या है। जो जीवन में उतारा वही बोला, कुछ अलग से नहीं बोला। उन्होंने कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारे कर्म पर अधिकार है फलों पर नहीं। ऐसा नहीं कि प्रवचन देने के लिए क्या, जीवन में उतारा जो कुछ किया कहीं फल अपने लिए नहीं रखा। मथुरा में कंस को मारा तो खुद राजा नहीं बना, जरासंध को मारा तो खुद राजा नहीं बना, शिशुपाल को मारा तो खुद राजा नहीं बना, हजारों राक्षसों को राजाओं को मारा तो खुद राजा नहीं बना, हस्तिनापुर के कौरव पांडवों के युद्ध में मुख्य भूमिका में रहा पर खुद कहीं नहीं रहा। काम करता गया, फल पर कहीं कोई दावा नहीं ठोका और मरा भी किसी जंगल में किसी अकेले निस्सहाय होकर के। कृष्ण ने कहा, योगी का लक्षण क्या है? पूरे महाभारत में व्यास चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, अगर योगी का लक्षण जानना हो, योगी कैसा है जानना हो तो गीता पढ़ो, अगर गीता नहीं पढ़ सकते हो कृष्ण का चरित्र देखो। खुद व्यास गीता के अंतिम श्लोक में, कंक्लूजन में, उपसंहार में बोलते, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां योगियों में श्रेष्ठ कृष्ण हो वहां जीतना तो निश्चित है, वहीं पर जीत है, वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर सुख है। ये व्यास का वचन है, व्यास उनके समकालिक है, कंटेम्पररी है, कंटेम्पररी लोग थोड़ा कम तारीफ करते हैं। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ है और राजसूय यज्ञ में एक नियम होता है कि यज्ञ शुरू करने से पहले पूज्य पूजा होती है। यह भारत में एक बड़ी परंपरा है। पूज्य पूजा मतलब जो हमारे में सबसे ज्यादा पूजनीय हो, रेस्पेक्टेबल हो, उसकी पूजा की जाती है, उसकी पैर धोया जाता है, उसकी सेवा की जाती है। तो कौन पूज्य है? एक से बढ़कर एक विद्वान, ज्ञानी, वीर, धर, सब कुछ थे। तो कौन पूज्य बनेगा? तो आपस में बात चली, भीष्म सबसे ज्ञानी और विद्वान माने जाते हैं। भीष्म ने कहा, अगर इस पूरी सभा में लाखों लोगों के बीच में कोई एकमात्र पूजनीय है, वो कृष्ण है। लोगों ने शिकायत उठाई, ये ना राजा है, ना क्षत्रिय है, ना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, ऋषि, तपस्वी है, ये कहां से महान हो गया? भीष्म ने जब सुनाया, कभी आपको कृष्ण की महिमा पढ़नी हो, महाभारत में राजसूय पर्व पढ़िए, भीष्म के मुंह से कृष्ण की प्रशंसाओं का। कृष्ण की कृष्ण उस राजसूय यज्ञ में सबसे पूजनीय होते हैं, पर जब काम चुना जाता है, काम बांटा जाता है ना, जब आप फंक्शन करते हैं तो आप आपस में काम बांटते हैं, तो जब काम बांटा जाता है, कृष्ण ने काम चुना कि इस यज्ञ में जो भी व्यक्ति आएगा मैं उसका पैर धोऊंगा और जो झूठा पत्तल होगा उठाने का काम मेरा होगा। लोग सम्मान मांगते हैं इसीलिए रोते हैं। सम्मान मिलता है, सम्मान इसीलिए नहीं मिलता है कि आप बड़ा काम करते हैं। सम्मान मिलता है आप छोटे काम को बड़े दिल से करते हैं। कृष्ण इसीलिए महान नहीं है कि वो कौरव पांडव के युद्ध में बीच में था, मैं गीता का उपदेश दिया। कृष्ण इसीलिए महान है कि वो महान होते हुए भी छोटे छोटे काम को महान समझ के करता था। स्थित प्रज्ञ का लक्षण गीता में, योगी का लक्षण कृष्ण बताते हैं। कृष्ण पूछता है, योगी कैसा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये जो स्थित धी योगी है उसका लक्षण क्या है? तो कृष्ण बताते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो सुखों में उछले नहीं, दुखों में निराश न हो जाए, राग द्वेष से परे रहे, ना कोई पाने की चाहत, ना किसी को छोड़ने की चाहत, सिर्फ कर्तव्य समझ के कार्य करे, हर परिस्थिति में एक जैसा भाव हो, वही योगी होता है। कृष्ण का जीवन देखिए, दूसरा स्लाइड चलाएं तो कृष्ण की योगी वाला रूप देखेंगे, दो नंबर वाला। एक तरफ कृष्ण हाथ में चक्र और गदा होता है, योद्धा है। अब दूसरा फोटो आप कृष्ण का देखते ही मुरली बांसुरी बजाता रहता है। कभी कृष्ण का चित्र आप उदासी मन नहीं देखेंगे, जैसे कि आजकल हम योगियों का देखते हैं, सन्यासियों का। इस सन्यासी अपने आप को सन्यासी दिखाने के लिए, साधु संत लोग सन्यासी दिखाने के लिए इतना उखड़ हुए मुंह लटका के बैठते हैं, लगता है मानो अगर मुंह लटकाएंगे नहीं शायद भगवान अंदर आविर्भाव नहीं होते हैं। और अब कृष्ण को देखते हैं, मुरलीधर है, जब देखो मुस्कुराता है, बांसुरी बजाता फिरता है। ये योगी का लक्षण है कि दुख में सुख में हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना, ऊपर नहीं, ये तो हिपोक्रेसी है, अंदर से खुश रहना। इसीलिए जब जरूरत पड़ता है चक्र चलाता है, गदा चलाता है, पर वो चक्र चलाते समय भी मुस्कुराते हुए चलाते हैं, क्योंकि इसीलिए नहीं चलाते हैं कि उनको कोई किसी के प्रति कोई खुंडक है, कोई गुस्सा है, कोई बदला लेना है, इसीलिए कि कर्तव्य करना है, ड्यूटी करना है। जज जब किसी बदमाश को सजा देता है तो उसको कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, क्योंकि वो कोई गुस्से में नहीं दिया, वो उसकी ड्यूटी है किसी को सजा देना। एक छोटी सी बात करके और समाप्त करूंगा। कृष्ण के चरित्र पर हमारे जो कृष्ण के परम भक्त होते हैं, वैसे एक चीज ध्यान रखिए, दुनिया में मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में महापुरुषों को बर्बाद करने वाले उनके फॉलोअर ही ज्यादा होते हैं।
ये तथाकथित कृष्ण भक्तों ने कृष्ण को सबसे ज्यादा लांछन लगाया कि ये क्या क्या राशि लीलाएं करता था। राधा नाम का चरित्र तो ना महाभारत में ना भागवत में, पता नहीं कौन से पुराण में कब आया, और वो कृष्ण का असली जो उज्जवल चरित्र महाभारत का, कोई कृष्ण भक्त आपको ये बोलते हुए नहीं मिलेगा कि चक्रधारी कृष्ण, गदाधारी कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, क्या बोलेंगे? राधा रमण कृष्ण। अरे भक्ति तो करो, मना नहीं है, पर क्या भक्ति में तुम्हें राधा के साथ रमण करना दिखता है पर योग साधना कृष्ण का नहीं दिखता? फिर कहें तो नाराज हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर सवाल उठा, मैं आपको बता दूं, कृष्ण खुद महाभारत के युद्ध, महाभारत में अपने बारे में बताते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त प्राय है, सारे सेनापति मर चुके हैं, अश्वत्थामा जिंदा है, अश्वत्थामा सेनापति बना है, दो चार और कोई कौरव सेना में कोई दो चार बचे हुए हैं। रात को कृष्ण के पास आकर बोलता है, आप तो लड़ाई करते नहीं हो, लड़ाई करना मना कर रखा है, आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे एक दिन के लिए दे दो ना। कृष्ण ने कहा, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे वो चीज मांगी जो मेरे बेटे ने भी कभी बचपन में मजाक मजाक में अपने बचपन में भी नहीं मांगा था, और वो बच्चा मेरा कैसा है? तो कृष्ण सुनाते हैं, जिस जो मेरा एकमात्र औलाद, कृष्ण का एक ही औलाद, वो खुद बोलते हैं, भक्त कितने बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर कृष्ण चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मेरा एक ही औलाद है और एक ही बीवी है। अश्वत्थामा को कहते हैं, मेरी एक ही बीवी है रुक्मिणी, शादी करने के बाद 12 साल तक मैंने उसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। इन कृष्ण भक्तों को दोबारा सुन ले, कृष्ण खुद महाभारत में कहते हैं, मैं कृष्ण रुक्मिणी से शादी करने के बाद 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जिस एकमात्र संतान को पैदा किया प्रद्युम्न, उसने भी मुझे कभी मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई। कृष्ण अपने चरित्र की दुहाई देते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं लफंगा नहीं हूं, मैं लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाला नहीं हूं, क्यों मुझे बदनाम करते हो? मेरी एकमात्र बीवी है रुक्मिणी, एक ही औलाद है प्रद्युम्न, जिसको 12 साल तक ब्रह्मचर्य रख के पैदा किया, तभी तो योगी है, तभी तो चक्र चलाना जरूरत पड़ता है तो चक्र भी चलाता है, पर हृदय में हमेशा शांति है, सद्भाव है। गांधारी अभिशाप देता युद्ध के बाद, तुम कुटिल हो, तुमने मेरे सारे बच्चों को मार डाला, मेरा खानदान खत्म कर दिया, तेरा खानदान में कोई नहीं रहेगा, तू भी सड़ सड़ के मरेगा, जब तू मरेगा तुझे बचा, तेरे साथ कोई नहीं होगा, तू अकेला तड़पता तड़पता मरेगा। गांधारी अभिशाप देती जाती है, कृष्ण मुस्कुराते जाते, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। ये योगी का लक्षण होता है। समय हो चुका है, आखिर में मैं फिर दोबारा उस जगत गुरु कृष्ण को प्रणाम करके अपनी बात को विराम देता हूं। कभी मौका मिले कृष्ण के ऊपर और बहुत कुछ हम सुनेंगे। ओम शांति। पर जो आप यहां कृष्ण के बारे में सुनेंगे वो कुछ अनोखी होगी, कुछ अलग होगी, कुछ आपके